ये आकाशवाणी है। अब आप दुर्गा प्रसाद से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा के लिए आज शाम फिजी में नादी के लिए रवाना हुई। फिजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। वे फिजी की संसद को संबोधित भी करेंगी। न्यूजीलैंड में श्रीमती मुर्मू द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और वेलिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। वे ऑकलैंड में भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति की तीन देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और गति मिलने और दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में भारत के विशेष फोकस की पुष्टि होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में आपराधिक न्याय उपकरणों को बेहतर करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सूति और ई समन व्यवस्था का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अब देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में जबरदस्त सुधार होगा, जिससे लोगों को तीव्र और समय पर न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून ने भारत में ब्रिटिश राज्य का दौर समाप्त कर दिया है। श्री शाह ने कहा कि ये कानून हमारे संविधान के बिल्कुल अनुकूल हैं, इससे लोगों को तीव्र न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में आज एक मंदिर की दीवार ढहने से 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। शाहपुर में हरदोल बाबा मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ये दुर्घटना हुई। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बचाव कार्य किए गए। सागर के जिलाधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि कुछ घायल बच्चों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दुर्घटना में मारे गए बच्चों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घटना में घायल को 50,000 रूपये दिए जायेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दीवार गिरने की यह घटना दुखदायक है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आज कहा कि उनकी पार्टी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है। उन्होंने मांग की कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 1 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्यों को संवैधानिक रूप से SC/ST कोटा में उप वर्गीकरण करने का अधिकार है। लखनऊ में सुश्री मायावती ने मांग की कि केंद्र की वर्तमान NDA सरकार को संविधान संशोधन करके निर्णय बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि SC/ST में सिर्फ 10 या 11% ही आर्थिक रूप से मजबूत हो पाए होंगे और बाकी 90% की हालत अभी भी बहुत खराब है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की रैली में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने किसानों का अब तक का 133 करोड़ रुपए का आबियाना माफ करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी फसलों को केंद्र सरकार की तर्ज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर बिजली निगमों के लगाए किसानों के ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो इन ट्रांसफार्मरों को निगम अपने खर्चे पर बदलेगा। सेंट किट्स और नेविस के विदेश मंत्री डेनजिल डगलस भारत की पहली विदेश मंत्री स्तरीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा सहयोग के नए अध्याय खोलेगी तथा भारत, सेंट किट्स और नेविस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को शूटआउट में 4-2 से हराया। निर्धारित समय में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 22वें मिनट में गोल किया। वहीं ब्रिटेन के लिए 27वें मिनट में मॉर्टन ली ने गोल किया। दोनों टीमों के 1-1 की बराबरी पर रहने पर मुकाबला शूटआउट में चला गया। उधर बैडमिंटन में पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को डेनमार्क के विक्टर एक्सलेशन के हाथ सीधे गेम्स में हार का सामना करना पड़ा। कल कांस्य पदक के लिए लक्ष्य मलेशिया के ली जी जिया का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।